विदेश के एक लेखक ने दो मित्रों की कहानी लिखी है। उसमें से एक अंधा है जिसे दिखाई नहीं देता। वो अपने मित्र से मिलने आता है और बातें करते करते रात हो जाती है, और फिर जब वो अंधा मित्र कहता है अब मैं जाऊं, तो वो मित्र दूसरा कहता है ठीक है, पर रात बहुत घनी है, तुम ऐसा करो एक लालटेन साथ ले जाओ। वो अंधा मित्र कहता है मुझे लालटेन की क्या आवश्यकता, चाहे दिन हो या रात, मुझे तो वैसे ही कुछ दिखाई नहीं देता, मैं क्यों ले जाऊं। पर दूसरा मित्र कहता है ये तुम्हारे लिए नहीं, एक रीति से तुम्हारे ही लिए, परंतु इसलिए कि जब तुम्हारे हाथ में लालटेन होगी तो कोई दूसरा तुमसे न टकराए, इसलिए तुम्हें तो कुछ नहीं दिखता पर अंधेरे में हो सकता है कि दूसरा तुमसे टकरा जाए। वो कहता है ठीक है, और वो अंधा व्यक्ति उस लालटेन को लेकर अंधियारी रात से जाने लगता है कि अचानक एक व्यक्ति जोर से टकराता है। अंधा व्यक्ति उस व्यक्ति से कहता है मैं तो अंधा हूं, क्या तुमको भी नहीं दिखता? मेरे हाथ में दिया है, लालटेन है, क्या तुमको भी नहीं दिखता? वो दूसरा व्यक्ति कहता है, तुम्हारे हाथ में लालटेन तो है पर वो बुझ चुका है, दिया तो है पर वो बुझ चुका है, ज्ञान के दिए तो है पर वो बुझे हुए है, ज्ञान की बातें तो है बट वो बुझ गई है, ज्ञान तो दिन रात सुन रहे हैं पर वो बुझा बुझा सा है, ज्ञान तो है पर वो क्रांति नहीं ला रहा है, ज्ञान तो है पर जीवन परिवर्तन नहीं हो रहा है, कितनी डायरियां भर रखी है, कितने चित्र बना रखे हैं, कितने पोस्टर्स, कितनी प्रदर्शनी, कितनों को ज्ञान सुना चुके हैं पर भीतर अंदर अंधकार कायम है। क्यों? क्योंकि हम रुक कर ये नहीं देख रहे कि हमारा दिया बुझ गया है या जल रहा है। दिया शायद बुझा है और हम समझ रहे हैं हमारे पास ज्ञान है। ज्ञानी का, ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु क्या है? अज्ञान। ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु है भ्रम, इल्यूजन कि हम ज्ञानी हैं। अगर ज्ञान होता तो ये दुख क्यों? अगर ज्ञान होता तो ये दर्द क्यों? अगर ज्ञान होता तो मन स्थिर क्यों, अस्थिर क्यों? अब भी वही द्वंद क्यों जो 10 साल पहले था या 20 साल पहले था? ज्ञान शांत कर दे चेतना को, स्थिर कर दे, वो ज्ञान है। इसके लिए जिस ज्ञान को हमने पाया है, ज्ञान एक यात्रा है, साधना है, किसी भी किताब से कुछ भी लिया हुआ ज्ञान नहीं है। ज्ञान स्व पुरुषार्थ से अर्जित किया हुआ अनुभव है, आधार लिया जा सकता है परंतु वो आधार ज्ञान नहीं है। किताबों से, मुरलियों से, क्लासेस से, पर वो ज्ञान नहीं है। ज्ञान के साथ जब तक अनुभव नहीं मिल जाता वो ज्ञान प्रकाश नहीं देता, और जब तक प्रकाश नहीं अंधकार ही रहेगा। हमारी स्थिति भी उस अंधे व्यक्ति जैसी ही है कि हम ज्ञान का दिया लेके जा रहे हैं पर वो दिया बुझ चुका और हमें पता ही नहीं, केवल दूसरों को सुना रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, पर वो ज्ञान हमें दुख से मुक्त नहीं कर रहा है। तो दिवाली अर्थात ज्योति जगानी है। किधर? भीतर। मर जीवा जन्म आज की मुरली में है, तुम्हारा वंडरफुल मर जीवा जन्म है, अर्थात पुराना कुछ नहीं, अर्थात अतीत समाप्त, तुम्हारे अलौकिक रीति रस्म है, अर्थात इस कलियुगी रीति रस्म का तुम पर कोई प्रभाव नहीं, ना ही तुम्हारा कोई मोह आसक्ति। द पास्ट इज डेड, मर चुका है वो जो अतीत का जीवन है, इसके लिए वहां की कोई बातें इधर नहीं आएगी। ज्ञान अर्थात रियलाइजेशन कि हम कितना कम जानते हैं, ज्ञान अर्थात ये समझ कि अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। स्वामी विवेकानंद ने लिखा है, वी डोंट मूव फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, वी मूव फ्रॉम लेसर लाइट टू हायर लाइट। हम अंधकार से प्रकाश की ओर नहीं, कम प्रकाश से ज्यादा प्रकाश की ओर जाते, और वो ज्यादा प्रकाश निरंतर हमें बुलाता रहे, आकर्षित करता रहे। जहां हम ठहरे हैं, जहां हम हैं, जो कुछ अब तक जाना है, सब कुछ अपने अनुभव से, दूसरों के अनुभव से, किताबों से, व्यक्तियों से, वो सब कुछ अभी बहुत कम है, अभी जानना बाकी है। आई बिगिन नाउ, मैं आज से जानने की ये प्रक्रिया, पुरुषार्थ चालू करता हूं। कुछ दिन पहले हम चर्चा कर रहे थे तीन नियमों की। कौन कौन से तीन नियम हैं? पहला सरकार के नियम, गवर्नमेंट रूल्स। दूसरा ईश्वरीय रूल, भगवान के रूल, गॉड्स रूल, ईश्वरीय जन्म के रूल, इस ब्राह्मण जन्म के रूल। और तीसरा नेचर्स रूल। ये तीन रूल है। सबसे ज्यादा हम कौन सा फॉलो करते हैं तीनों में से? सरकार के। क्यों? क्योंकि डर है। सबसे ज्यादा नियम कौन से फॉलो किए जाते हैं? गवर्नमेंट के रूल्स। अगर गवर्नमेंट के रूल फॉलो नहीं करेंगे तो क्या मिलता है? तुरंत दंड। तो इस रूल के साथ क्या जुड़ा हुआ है? भय, फियर और सुरक्षा। सुरक्षा की तरफ ध्यान कम है, भय ज्यादा है। क्योंकि सरकार के जो नियम है वो किस लिए? हमारी सुरक्षा के लिए। पर हम करते हैं किस लिए? भय से। खून, मर्डर, भय। स्मगलिंग, ड्रग्स, भय। ट्रैफिक रूल्स, भय। इन सब में से किसी को भी तोड़ेंगे तो। ये सब गवर्नमेंट रूल्स में क्या है? और हम बहुत होश में इस रूल को फॉलो करते हैं क्योंकि भय बहुत ज्यादा है। किस चीज का भय? दंड का, जेल में जाने का, बदनामी का, अखबारों में आने का, मीडिया का हाईलाइट बनने का। ये भय है, इसलिए बहुत अधिक भय है। इसलिए बहुत कड़ाके से, कड़ाई से इन नियमों का पालन किया जाता है। क्योंकि हाल देखा है उनका, जिन्होंने नहीं पालन किया उनका क्या हुआ। दूसरे नियम है ईश्वरीय नियम, गॉडली रूल्स, श्रीमत, मुरलियों में आने वाली बातें, अव्यक्त वाणियों में आने वाली बातें, इनका भी हम पालन करते हैं। इनके प्रति भी भय है, सुरक्षा का भाव है, पर उससे ज्यादा प्रेम है, इसलिए फॉलो करते हैं। ईश्वरीय नियम क्यों फॉलो करते हैं? क्योंकि भगवान कह रहा है। और किससे कह रहा है? मुझसे कह रहा है। पर उतने नहीं फॉलो करते जितने ये फॉलो करते हैं, क्योंकि यहां डर थोड़ा सा, थोड़ा कम डर है। और है भी तो वो दंड अभी नहीं मिलेगा, वो बाद में मिलने वाला है दंड, इसलिए थोड़ा रिलैक्स है। और मिलता भी है तो हम ये समझते नहीं कि वो दंड मुझे इस नियम के उल्लंघन के कारण मिला है। हम उसको जोड़ते हैं पुनर्जन्म से, कर्म से, कार्मिक अकाउंट से, किसी और बातों से जोड़ देते, इसके लिए हल्के रहते। तो दंड नियमों का पालन न करना, दंड मिलना परंतु हल्के रीति से लेना, इसलिए चल रहे। और दंड अगर मिलता भी है, दंड का इतना भय है ही नहीं, बहुत कम भय है। क्योंकि देखा दूसरों ने भी तोड़ा, उनको दंड मिला ही नहीं। यहां पे दूसरों को देखा, वो सीधा जेल में बैठे है। ये बहुत कड़ा दंड है, इसलिए भय जितना ज्यादा उतना कड़ाई से लोग पालन करते हैं। यहां पर ईश्वरीय नियम में भय इतना नहीं है, कम हो गया है, क्योंकि यहां प्यार ने ओवरटेक कर लिया है लव को, यहां अपनापन है। इसलिए भगवान के दो रूप है, एक धर्मराज का रूप और दूसरा उसका बाप का। तो बाप ने धर्मराज को पीछे ढकेल दिया है थोड़ा, पर वो बीच बीच में आता रहता है। और जब आता है और एकाधी अचानक से मुरली चलती है, हंटर मिलेंगे, तो अचानक से फिर डर लगता है। हाँ, उस दिन के लिए थोड़ा थोड़ा डर हमको संभाल लेता है, पर फिर से प्रेम ओवरटेक कर लेता है। इसलिए ठीक है, ये दंडों का इतना कुछ नहीं है। और सबसे ज्यादा जिसके प्रति हम भयभीत ही नहीं होते, वो तीसरा नियम है। वो कौन? वो है नेचर्स लॉ, प्रकृति के नियम। सरकार के नियम, ईश्वरीय नियम। ईश्वरीय नियम फॉलो करने वाले भी, जो कड़ाई से ईश्वरीय नियम फॉलो करते, एक एक श्रीमत को फॉलो करते, वो भी प्रकृति के नियमों के प्रति असावधान है। और तीनों में ही दंड है। पहला दंड सीधा जेल की हवा या फाइन, दूसरा दंड ईश्वरीय नियम को तोड़ा, दुख मिला, आत्मग्लानी, खुशी गायब, पश्चाताप, यह ईश्वरीय नियम। प्रकृति के नियम तोड़े क्या मिला? बीमारी। तो जब जब बीमार हुए हैं इसका मतलब क्या हुआ है? प्रकृति के किसी ना किसी नियम को समझा ही नहीं है और उसको तोड़ा है, और तोड़ने के बाद में भी दंड का कोई भय ही नहीं है, क्योंकि प्रकृति तुरंत दंड नहीं देती है। जैसे गवर्नमेंट क्या करती है, तुमने ट्रैफिक रूल थोड़ा ठीक है अभी एक साल बैठो फिर आना, फिर तुमको पकड़ेंगे तुरंत। ये भी तुरंत नहीं है, थोड़ा सा इसमें पता नहीं चलता, इतना ग्रेजुअल है ट्रांजिशन, इतना समय निकल जाता है कि ये उस विकर्म की सजा ये पता ही नहीं चलता है। संपूर्ण ब्रह्मचर्य ईश्वरीय नियम है, इसको तोड़ा दुख मिलेगा, फ्रस्ट्रेशन आएगा। क्या करते हैं पति एक दूसरे के क्या बन जाते हैं? दुश्मन। कल की मुरली थी परसों की। तीसरा, नेचर के जो रूल्स है वो क्या क्या है। जैसे हमने ईश्वर के रूल्स को समझा है और वो सब पर लागू होते, जो भी तोड़ेगा उसे दंड मिलेगा, गवर्नमेंट के रूल्स में भी जो भी तोड़ेगा उसे दंड मिलेगा, वैसे प्रकृति के रूल, चाहे राजा हो या रंक हो, चाहे बहुत ही महान आत्मा हो, धर्मात्मा हो या पापात्मा हो, टेररिस्ट हो या स्पिरिचुअल लीडर हो, कोई भी हो, प्रकृति के नियम तोड़ते ही प्रकृति क्या कर देगी? दंड देगी। सबसे पहले ये जानना है प्रकृति के रूल क्या क्या है, आप बताएंगे प्रकृति के क्या क्या नियम है, प्रकृति का रूल्स क्या क्या है। बहुत सारे रूल्स हैं जो दिखाई देते हैं, प्रकृति के नियम है वो क्या क्या। प्रकृति के नियम क्या क्या है? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो फिट है वो सर्वाइव करेगा, बाकी सब एक्सटिंक्शन हो जाएगा। डार्विन थियरी है, ये एक रूल है। दूसरा, प्रकृति समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलेगा, ये ईश्वरीय रूल भी है, प्रकृति का भी हो सकता है, और वो चक्र है। रूल क्या क्या है? लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, जो कुछ हो रहा है उसका कुछ ना कुछ कारण है, ऐसा हो ही नहीं सकता है, कार्य कारण का नियम है प्रकृति का। जो कुछ हमारे जीवन में हो रहा है, किसी ना किसी जन्म में हमने बीज बोया था उसकी ये फसल है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि अचानक क्यों हो गया, मेरे साथ ही क्यों हो गया, अब तक तो सब ठीक रहा था, अब तक जो मित्र था अचानक शत्रु क्यों बन गया। जो तुमने किया है वो वापस लौट कर तुम्हारे ही पास आएगा। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करी तो तसफल चाखा। यह संसार कर्म प्रधान है। इस बाबा ने कहा मैं दो डिपार्टमेंट्स में इंटरफियर नहीं करता हूं। कौन से डिपार्टमेंट है वो जिसमें भगवान इंटरफियर ही नहीं करता है? एक तो कर्म का डिपार्टमेंट, दूसरा प्रकृति का डिपार्टमेंट, इसमें मैं इंटरफियर नहीं करता हूं। ब्रह्मा कहते बाबा मुझे बहुत खांसी है, किराया आज की मुरली में है ना किराए की बात, तुम्हारी खांसी है तुम देखो, मुझे क्या लेना देना। वो प्रकृति के डिपार्टमेंट में इंटरफियर नहीं करता, कर्मों के डिपार्टमेंट में इंटरफियर नहीं करता। प्रकृति के नियम तुम तोड़ो सजा भोगो, जो कर्म किया वो सजा भोगो, भगवान इससे अलिप्त है। और नियम प्रकृति के वो बाद में, नियम प्रकृति के क्या क्या है? लॉ एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो तुम सोचोगे वो अट्रैक्ट करते हो प्रकृति से। कोई सोचते रहता है मैं दुखी हूँ, दुख को एक अट्रैक्ट करते रहता है। कोई दिन भर सोचते रहता है, रात भर सोचते रहता है, जीवन भर सोचते रहता है मुझे कुछ नहीं मिला, उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। जिसकी निगेटिव विचारधारा है वो निगेटिव विचारधारा को ही अट्रैक्ट करता है। जो भयभीत रहता है ये हो जाए तो क्या हो जाएगा, वो मर जाए तो क्या हो जाएगा, पत्नी मर जाए तो क्या हो जाएगा, बीवी मेरा पति मर जाए तो क्या हो जाएगा, भय में जीता है, जीवन निर्भय हुआ ही नहीं, अभी तक अज्ञान अंधकार में भटक रहे, वो उसी तरह के संकल्प और उसी तरह की परिस्थितियों को अट्रैक्ट करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है जो विचार तुम उठाते हो वो विचार प्रकृति में जाता है, रिएक्शन होती है, घटनाओं का निर्माण होता है। मैं बीमार हूँ प्रकृति में गया, रिएक्शन हुई, घटना का निर्माण, तुम सही में बीमार हो जाते। ये प्रकृति का नियम है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ पोलैरिटी दूसरा नियम है। प्रकृति का नियम है हर चीज़ दो है, मेल फीमेल, हार जीत दोनों को स्वीकार करना है। लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसम्यूटेशन, एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं की जा सकती। एनर्जी क्या होती है? ट्रांसफर होती है। लॉ ऑफ प्रकृति का नियम ग्रेविटी, ये तो अलग ही फिजिक्स के रूल्स है, फिजिक्स अलग, और प्रकृति के रूल्स क्या क्या है? हर क्रिया की एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये प्रकृति का नियम है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, यहां कुछ भी अस्थायी नहीं है। लॉ ऑफ इम्परमानेंस, जो कुछ दिखाई दे रहा है सब कुछ नष्ट हो जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा, ना तुम्हारा घर रहेगा ना तुम्हारे परिवार वाले रहेंगे, आज है कल कोई नहीं रहेगा। जो इन नियमों का चिंतन नहीं करता उसको एक ना एक दिन दुखी होना ही होगा। आज की मुरली में ड्रामा के सब एक्टर्स हैं, मोह किस में रखे? रोते क्यों हो? सारे देह के संबंध दुख देने वाले हैं, जबकि मैं तुमको मिला हूं परसों की मुरली, तो मुझे क्यों नहीं याद करते? जबकि मैं तुमको मिला हूं, कितने पावरफुल वाक्य है, फिर भी देह के संबंधों को याद करते हो। तो प्रकृति का रूल क्या है? लॉ ऑफ इम्परमानेंस। आज ठंडी है, कल गर्मी होगी, फिर बारिश होगी, बदलते रहेगा, बदलना ही प्रकृति का नियम है। और जो चीज जन्म ली है वो मरेगी, ये प्रकृति का रूल है। एवरीथिंग दैट हैज बर्थ विल डाई, ये प्रकृति का नियम है। कोई कह नहीं सकता कि ये मरा क्यों, वो क्यों मरी, ये क्यों मरी, सब मरेंगे। मैं महाकाल हूं, मारने ही तो आया हूं, तुमने ही बुला था आ जाओ, पर बुलाया था तब पता था किसको बुला रहे हो, तुमने अपनी मृत्यु का आह्वान किया है। मृत्युंजय एक परमात्मा ही है वैसे तो, और कोई मृत्युंजय नहीं है। और प्रकृति के नियम लव, क्या वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आ गया, जो फैलाओगे वो आएगा। और जो बोओगे वो काटोगे, वो कर्मों का रूल है, लॉ ऑफ कर्मा। और वो नेचर है, लॉ अर्थात कानून, प्रकृति के कानून क्या है, इतने सारे गिनाए। अभी जिसकी हमारी चर्चा चल रही है कुछ दिनों से, उस कानून की तरफ आते हैं, नेचर्स फर्स्ट लॉ। नेचर का आदेश है, ये खाओ, ये नहीं खाओगे तो बीमार पड़ोगे, रोगी होगा शरीर, कमजोर होगा शरीर, ये प्रकृति का नियम है। इसमें भी भगवान इंटरफियर नहीं करता है। और जिसके शरीर, हमारा शरीर रसायन से भरा हुआ है, दारू डालो तो दारू वही करेगा उसमें, हर व्यक्ति में, चाहे संत हो, चाहे योगी हो, चाहे भोगी हो, जो इसमें डाला जाएगा वो प्रतिक्रिया करेगा। उत्तेज, कल परसों हमने देखा था आहार में क्या चाहिए, वो आहार हो जो अनुत्तेजक हो, वो आहार हो जो निद्रा प्रमाद और आलस न लाए, वो आहार हो जिसे खाते ही प्यास न लगे, वो आहार हो जो प्रेम से स्वीकार किया जाए, वो आहार हो जो अहोभाव से स्वीकार किया जाए। यदि प्रेम नहीं है, रिसेंटमेंट से स्वीकार किया जा रहा है, एंगर से स्वीकार किया जा रहा है, तो वो भी तमोप्रधान ही है। कंप्लेंट के साथ किया जा रहा है, खड़े खड़े किया जा रहा है, जल्दी जल्दी में किया जा रहा है, जल्दी जल्दी है, फटाफट खा लो, और जो आहार खा रहे उसको वैसे ही छोड़ दिया जा रहा है, वैल्यू नहीं है। जाकर देखो ओम शांति भवन के बाजू में वो बर्तन रखे हुए हैं, सब कचरा पड़ा हुआ है, कल जो खाया था कितनों ने उसको आधा आधा छोड़ के फेंक दिया है। एक एक मुहर, एक एक दाना मुहर समान है, जाकर देखना वहां पर कितनों ने सारा, बहुत सारा छोड़ दिया है। अगर खा ही रहे हो तो सम्मान पूर्वक, अगर खा ही रहे हो तो माइंडफुल ईटिंग हो, खा ही रहे हो तो वो धीरे धीरे हो, वो जल्दबाजी में ले लिया, बहुत ज़्यादा ले लिया, ओवर ईटिंग कर लिया, ये सारे प्रकृति के नियमों को तोड़ना है। और जब जब प्रकृति के नियमों को तोड़ा जाएगा अलॉन्ग विथ ईश्वरीय को नियमों को, दोनों को तोड़ दिए वहां पर। ईश्वरीय नियम कहता है, क्या कहता है, एक एक दाना मोहर समान है, ये क्या है, ब्रह्मा भोजन है, ये दुख भंजक भोजन है। 16 February 88 मुरली कौन सी है, यही है ना, लगा हुआ है ना भंडारे के सामने इतना बड़ा बोर्ड, दंड मिलेगा। पर प्रॉब्लम यह है इस दंड के साथ, वो गवर्नमेंट के दंड जैसा नहीं है, तत्काल नहीं है वो। और प्रकृति का दंड तो बहुत ही स्लो है, आज नहीं 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, 20 साल के बाद, 50 साल के बाद, धीरे धीरे और शरीर को खोखला करेगा, शरीर को भारी करेगा, रोगी करेगा, दुखी कर देगा। तो प्रकृति के ये सारे नियम हैं, और प्रकृति के नियमों में पहला नेचर्स फर्स्ट लॉ इज, प्रकृति ने जो दिया है, जिस रूप में दिया है, उसी रूप में उसे स्वीकार करना। नेचुरल फूड इन नेचुरल फॉर्म, तो ही शरीर में ऊर्जा होगी, शक्ति होगी, स्फूर्ति होगी, रोगहीन शरीर होगा। योगी रोगी शरीर अध्यात्म के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा है, बहुत बड़ी बाधा। इसके लिए नेचर्स फर्स्ट रूल इज फॉलो नेचर, जो उसने जैसा हमारे लिए निर्देशित किए रखा है वैसा ही उसको खाना। हमारी यात्रा भोजन की कहां से चालू होती है, नॉनवेज से, मांसाहार से, नॉनवेज, नॉनवेज को तो छोड़ दिया, वेजिटेरियन में आ गए। वेजिटेरियन में भी फिर प्याज लहसुन को छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया, क्योंकि उत्तेजना उत्पन्न करता है वो, प्रमाद लाता है, आलस लाता है, रजोगुण है उसमें, ऐसा व्यक्ति कभी भी शांत नहीं रह सकता, स्थिर नहीं रह सकता, आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर सकता, भले संसार में साइंटिस्ट बन जाए, पॉलिटिक्स में आगे चला जाए, पर चेतना की यात्रा में, अंतर यात्रा में आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ उसे रोकेगा, उसके प्रकंपनी उसे रोकेंगे। हम बन गए वेजिटेरियन, और इसका बड़ा घमंड है कि हमने क्या छोड़ दी, हिंसा छोड़ दी। पर रोगी तो उतने ही है, जितने नॉन वेजिट वाले रोगी है उतने वेजिटेरियन भी रोगी है। फिर यहां हमने और कुछ 2-3 नियम और ऐड किए, इसके हाथ का नहीं खाएंगे, उसके हाथ का नहीं खाएंगे, हम बाहर का नहीं खाएंगे, पर बाहर का तो छोड़ा, पर बाहर से बड़ा बड़ी आहार की दुनिया यहां खड़ी कर रखी है हमने, उसके सामने बाहर की दुनिया कुछ भी नहीं है। बाहर में 4 वेराइटीज है, इधर 400 है, उधर जो साल में एक बार खाते थे यहां वो रोज है, वहां कम कम खाते थे, इतनो इतनो सा मिलता था, लिमिट लिमिट से देते थे, बाहर के किसी शिविर में जाओ गिन गिन के देते हैं। यहां ईश्वरीय पालना है, बेहद की पालना है, बड़ा दिल है, भरपूर बनता है, जितना चाहिए उतना, जो वैरायटी चाहिए वो मिलती है, सब कुछ मिलती है। तो हमने इसमें क्या जोड़ा था पहले, क्यों चक्रा था, क्योंकि हम इसके हाथ का नहीं खाते, क्योंकि वो याद में नहीं बनाते, वो ईश्वर को नहीं जानते, वो नास्तिक है, वो ज्ञान में नहीं चलते, उन्हें श्रीमद का पता नहीं, वो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते, वो प्यूरिटी को पालन नहीं करते, इसलिए हम उनके हाथ का नहीं खाएंगे, वो अज्ञानी है, बड़ी हेय दृष्टि है हमारी उनके प्रति, बिल्कुल हम आपके हाथ का नहीं खाएंगे, हटाओ, हम इनके हाथ का खाते, जो ज्ञानी है, जो योगी है, जो तपस्वी है। पर तपस्वी तो है, पर और पर, बट एंड बट एंड बट, डैश डैश डैश, किसकी याद में खा रहे हो, किसकी याद में बना रहे हो, प्रश्न है। तो नॉनवेज तो छोड़ दिया, पर वेजिटेरियन, पर वेजिटेरियन बनने के बाद, इसका उसके हाथ का खाना छोड़ने के बाद, प्याज लहसुन छोड़ने के बाद भी रोगी उतने ही है जितने नॉन वेजिटेरियन रोगी है। क्यों, हम शाकाहारी है या मांसाहारी है, जो भी है निश्चित रूप से रोगी जरूर है। आप शरीर को दूषित अम्लकारक विषैले शाकाहार से करते हैं या मांसाहार से, शरीर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे इससे दे रहे थे चाहे इसका दे रहे हो, फर्क ज्यादा नहीं पड़ता, बीमार फिर भी है, क्योंकि शरीर में जो कुछ डाला जा रहा है वो असर करेगा जरूर। शरीर तो केवल ये देखता है कि उसको रोग कारक विष द्रव्य मिल रहे, चाहे वो शाकाहार से, मांसाहार से, व्यसन से या प्रदूषण से। आपके मकान की कौन सी खिड़की से गंदगी भीतर आती है, इससे क्या फर्क पड़ता है? गंदगी भीतर आ रही है, यही प्रमुख बात है। आप अनाज चीनी खाकर शरीर तोड़ते हो या मांस खाकर? एक कुल्हाड़ी है तो दूसरा तलवार। शरीर को अंततः ये तोड़ेंगे अवश्य। फर्क तो सिर्फ इतना ही है कि एक होगा 40 साल में, दूसरा 50 साल। शाकाहार निश्चित ही मांसाहार से कम हानिकारक है, परंतु स्वास्थ्यदायक किसी हालत में नहीं। शाकाहार का पहला पहलू है अहिंसा, किसी प्राणी की हत्या न करना। शाकाहार का सबसे निकृष्ट रोग कारक पहलू है अनाज चीनी नमक मसाले दूध घी रिफाइंड एवं तले हुए आहार मिठाइयां जैसे शरीर को बर्बाद करने वाले आहार है। शाकाहारी मांसाहारी से अहिंसा की दृष्टि से भले ही दूर है, परंतु महामारक रोगों विकृति की दृष्टि से दोनों एक ही नाव के यात्री है। शाकाहार के दूसरे महारोग, मांसाहार के दूसरे महारोग। इसकी अलग बीमारी है, इसकी अलग बीमारी है। बीमार तो दोनों ही है। एक हार्ट अटैक कैंसर से मरता है तो दूसरा भी कैंसर हृदय रोग से। दोनों में अंतर नगण्य। इस धरती पर एक भी ऐसा शाकाहारी प्राणी नहीं जो किसी ना किसी रोग से पीड़ित नहीं है। वो कहते हैं हम नॉनवेज तो छोड़ दिया, हम शाकाहारी है, पर रोग इष्ट जरूर है। शाकाहार का स्वास्थ्य से क्या लेना देना? सवाल यहाँ शाकाहार मांसाहार का नहीं, सवाल तो एक ही है कि शरीर के प्राकृतिक अटल नियमों को के हम विरुद्ध कहाँ तक होते हैं, शरीर पर कहाँ से बोझ बनते हैं, कहाँ से तोड़ते हैं, क्या खाकर विषाक्त करते असंतुलित करते हैं। फल मेवों को छोड़कर पूरा शाकाहार अखाद्य रोग कारक आहार से भरा है। पहला, रिफाइंड लूटे हुए खाद्य मैदा। मैदा क्या है? चीनी, ये धूली सारी दालें। अनाज में सबसे खतरनाक अनाज है रिफाइंड मैदा। मशीनों से गुजर कर ये अनाज पूरी तरह लूट जाता है, नंगा हो जाता है। इसके सारे खनिज तत्व रेशे जो अनाज के संपूर्ण पाचन के लिए सहयोगी थे बाहर छूट जाते। ये लूटा हुआ नंगा आहार भीतर जाकर हमारे पाचन के लिए शरीर को लूटता है, खनिज तत्वों को नोच लेता है और शरीर को कमजोर और शिथिल कर देता है। सामान्य अनाज से पैदा होनी अम्लता के मुकाबले रिफाइंड अनाज मेवे चावल दाल अनाज मशीन से गुजार कर अपना क्षार तत्व को खो देकर भयंकर अम्लता वाला आहार बन जाता है। रिफाइंड अनाज की अम्लता मांस की अम्लता से भी अधिक हानिकारक है। एसिडिक डाइट है ये सारा, और जितना एसिडिक डाइट शरीर में जाएगा शरीर की प्रतिकार शक्ति रोग प्रतिकार शक्ति कम होगी। बार बार व्यक्ति बीमार पड़ते जाएगा, सभी सर्दी कभी खांसी कभी जुकाम तो कभी कुछ तो कभी कुछ, कुछ ना कुछ होते ही रहेगा। और दोष किस पे डालेगा? मौसम। दोष किस पे डालेगा? अगर बड़ी बीमारी है और लंबी है तो कार्मिक अकाउंट पर। पर किया क्या है? प्रकृति के नियमों को तोड़ा है। प्रकृति कहती है ये सब तुम्हारा आज नहीं है। कल भी देखा था पांच प्रकार की थालियां, मांस की थाली, अनाज की थाली, अंडे की थाली, चौथी हरी पत्तियों की थाली, फल मेवों की थाली। जिस जिस को जहां जहां छोड़ो, गाय को छोड़ो वहां कहां जाती है, शेर को छोड़ो वो कहां जाता है, और मनुष्य को छोड़ो तो कहां जाता है, सब खा जाता है। कोई नियम ही नहीं है मनुष्य के खाने का, सब कुछ खाया उसने, कुत्ते बिल्लियों से लेकर सारे पक्षियों को उसने खाया है द्वापर से अब तक। ऐसा कोई आहार नहीं है कि जो उसने छोड़ा है, सब कुछ खा लेता है वो, अगर उसके मसाले डालकर उसके सामने परोस दिया जाए तो, रोस्ट करके। सांपों को नहीं छोड़ा उसने। शरीर अपने आप को कब तक लूटता रहेगा और इस खतरनाक अम्लता से अपने आप को बचाते रहेगा? वो सारा डाइट जो एसिडिक है हमारा आहार नहीं है। उस पर उस दिन देखा था, कहने की आवश्यकता नहीं। एक एक घर एक एक शरीर से उठ रही पीड़ा की करा अपने आप में सबूत ही देगा। मुंह में यह आहार डालने से पहले अपने आप से पूछ लीजिए कि लूटा हुआ खाद्य हमारे शरीर का पोषण करेगा या शोषण? हम खा नहीं रहे, खाना हमको खा रहा है। भोग हमें भोग नहीं रहे, हम भोगों को भोग नहीं रहे, भोग हमें भोग रहे। नेचर्स फर्स्ट लॉ, कुछ भी चीज खाने से पहले उसको हाथ में रखो और अपने आप से पूछो क्या इसे वैसे ही खा सकते हैं जैसे प्रकृति ने दिया है। अगर उत्तर है नहीं तो फिर वो हमारा आहार नहीं है। दालों को हाथ में लो, चावल को हाथ में लो, गेहूं को हाथ में लो, कोई भी चीज़ हाथ में लो और पूछो कि क्या इसे मैं वैसे ही खा सकता हूँ जैसे इसे प्रकृति ने दिया है। अगर उत्तर हाँ है तो ठीक, अगर नहीं है तो फिर वो कभी ना कभी किसी ना किसी रोग से ग्रसित जरूर करेगा। तो मैदा, खतरनाक बेकरी खाद्य, ब्रेड, बिस्किट, पेस्ट्री, पिज्जा, बर्गर इत्यादि, ये सब क्या है? सतोप्रधान आहार है योगियों के? क्या आहार है ये? बिस्किट्स कहते हैं मशीन से बने हुए, इसके लिए अलाउड है, बाबा ने इसके लिए कुछ नहीं कहा है, ये चलता है। कोल्ड ड्रिंक्स चलता है, चॉकलेट्स चलता है, आइसक्रीम चलता है, ये मशीन का बना हुआ है। इसके पहले भी सुना था, एक कुमार निकला उधर अहमदाबाद से या कहीं और से माउंट आबू आने के लिए, कुमार था, उसके साथ में 3-4 लोग बैठे हुए थे, उन्होंने कहा थोड़ा आप भी खा लो, हम लोग खा रहे हैं, भोजन वो अपना कर रहे थे। उसने कहा नहीं नहीं हम बाहर का नहीं खाते। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, नहीं खाते तो क्या कर सकते, ज़बरदस्ती थोड़ी करेंगे। उनका भोजन पूरा हुआ, फिर उन्होंने कहा कम से कम बिस्किट तो ले लो, ये बाहर का नहीं है, ये तो मशीन का है। उसने सोचा ये ठीक है, एडजस्टेबल श्रीमत, सुविधाजनक श्रीमत, श्रीमत ऑफ कन्वीनियंस, कि हमें श्रीमत को थोड़ा सा अपने हिसाब से मोल्ड करके, बाबा ने कहा ना मोल्डिंग नेचर, तो वो एडजस्ट कर लिया उसने कि ये ठीक है थोड़ा, मतलब इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, मेरी जो धारणा है वो टूटेगी नहीं। और उसने वो खा लिया। जब उसकी आँख खुली तो वो उधर था आगे, कहाँ, सिरोही, और उसका सारा सामान गायब, लूट के लेके चले गए। बिस्किट में क्या था? हम कहते हैं मशीन मेड है। बिस्किट यानी लुटेरों का गिरोह। कौन से लुटेरे? लूटा हुआ मैदा, लूटा हुई चीनी, लूटा हुआ रिफाइंड डालडा, साथ में कुछ रसायन शरीर को लूटने और रोगी बनाने के लिए काफ़ी है ये सब। 1 किलो बिस्किट में 600 ग्राम डालडा घी यानी चर्बी से लिपट कर आग में सिका एक पकौड़े की तरह तला हुआ खाद्य। चर्बी के संपर्क में आकर जो आहार आग में सिका वह सिर्फ तला हुआ आहार है। फर्क क्या पड़ा? समोसा बाहर से तला है, बिस्कुट भीतर से तला हुआ है, और तले आहार का कभी अच्छा पाचन नहीं होता है। जो भी तला हुआ रहेगा उसका पाचन, क्योंकि फैट डिलेज डाइजेशन, जितना जो ऑयली है और जो ऑयल को हीट किया गया है वो और ज़्यादा अम्लकारक है। इसलिए सुबह सुबह क्या होता है, डकारे, खट्टी खट्टी डकारे, यहाँ कुछ कुछ जलन, और फिर हम क्या करते हैं उसको दवाई लेके ख़त्म कर देते हैं। दंड मिला ही नहीं प्रकृति का, प्रकृति दंड देने वाली थी पर हमने उसका भी, हमारे पास इलाज है। गवर्नमेंट जब दंड देती है उसका कोई इलाज नहीं है, गवर्नमेंट का नूल तोड़ा तो तुरंत दंड मिलता है, यहाँ दंड तुरंत नहीं मिलता। और दंड अगर मिला भी, सुबह सुबह एसिडिटी हुई, सुबह अमृत वेला लगा, इधर क्या जलन हो रही है, तुरंत डॉक्टर के पास गए, दवाई ले ली। यहाँ दंड मिल दे रही थी प्रकृति, और वो अगर दंड झेल लिया होता तो बहुत अच्छा होता। दंड अर्थात झेलना, अर्थात अब नाश्ता छोड़ दो, दोपहर का भोजन छोड़ दो, कुछ नहीं खाओ शाम तक, जब तक ये एसिडिटी कम नहीं होती। पर हमारे पास आसान तरीके है, तुरंत इंजेक्शन, तुरंत टैबलेट, तुरंत सिरप, अब ठीक लग रहा है, चलो अभी नाश्ता करने। प्रकृति ने एक अवसर तो दिया था कि तुमने रात में गलत खाया है, और प्रकृति बहुत धीरे धीरे दंड देती, यही प्रॉब्लम है। बहुत आराम से, पता ही नहीं चलता, एक दिन अचानक पता चलता है हार्ट ब्लॉक, एक दिन अचानक पड़ता है हार्ट अटैक, फिर कहते हैं अरे हम तो कुछ भी नहीं खाते, ना बाहर का खाते, हम तो बीड़ी सिगरेट कुछ भी नहीं, सब ही, मतलब कुछ भी, कोई है ही नहीं व्यसन। ऐसी सच्चाई होती है शब्दों में ब्राह्मणों के, जब बीमार पड़ते हैं तो एक एक शब्द में सच्चाई होती है, हम कुछ भी नहीं, मतलब एकदम प्रॉपर है हमारा, बस पता नहीं कौन सा कार्मिक अकाउंट है, किसी जन्म का हिसाब किताब है। आध्यात्मिक वादियों के पास ये एक बहुत अच्छा सिद्धांत, उनको टूल मिल गया है, कर्म सिद्धांत, इसको वो जब चाहे जहां चाहे अपने यूज करते रहते हैं। सुविधाजनक श्रीमत, अच्छा होता गवर्नमेंट जैसे रूल्स होते, गवर्नमेंट के रॉ, डर रहता है जेल में तो नहीं चले जाएंगे, यहाँ कोई जेल नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो प्रकृति के नियम में पहला नियम क्या, जितने नियम बताए उसमें भोजन का नियम क्या है, नेचर्स फर्स्ट लॉ, जो चीज जैसी है उसे वैसे ही स्वीकार करना। हाँ यह है कि एक दिन में नहीं होगा काम। 50 साल से किसी ने शरीर में दारू डाली है, उसको कहो दारू छोड़ दो बहुत बुरी है, वो पढ़ता है दारू के बारे में, सब उसको समझ में आ गया कि दारू छोड़नी है, पर नहीं छोड़ पाता। क्यों? क्योंकि एडिक्शन हो गया है। वो निकालते ही, वो रोकते ही शरीर रिएक्ट करता है, विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं, कंपन होने लगता है। जब तक दारू नहीं पिएगा उसको शांति नहीं मिलती है। इसलिए जो 20 साल से बीड़ी पी रहा है, रोज 40 पीता है बीड़ी, तो उसको फिर एक दिन में छुट्टी नहीं, उसको कम कम करना होता है, 20 करो 10 करो। पेशेंट आते हैं हमारे पास, अभी कैसा है, हम कहते हैं अभी छोड़ दी क्या? नहीं नहीं अभी छोड़ी नहीं, अभी 10 तक आए हैं, 10 बीड़ी पर डे, ठीक है यात्रा जारी है, अभी और कम करो। उसको भी 2-3 महीने लगेंगे। अगली बार आए कितना? अभी 8 तक आ गया है। बहुत धीरे 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 चीज़ों को छोड़ना। और जब चीज़ों को छोड़ना होता है तो बॉडी रिएक्ट करती है, इसके लिए सब्स्टिट्यूट चाहिए, नहीं तो फिर भूख पागल कर देगी, और फिर तो इतना खाएंगे कि बात मत पूछो, फिर भूल जाओ सारे नियम, कोई नियम नहीं, भूख के सामने सब कुछ खत्म हो जाता है। भूख जब लगती है तब क्या होता है, व्यक्ति देखता है कुछ? कुछ नहीं, चोरी भी कर सकता है, कुछ भी कुछ भी। भूख का अनुभव तो ब्राह्मणों को है ही नहीं एक्चुअली, क्योंकि भूख से पहले ही खा लेते हैं। भूख क्या होती है पता ही नहीं है। बहुत भूख लगी, कैसे पता चलेगा? अभी अभी नाश्ता किया, 4-5 घंटे ही नहीं हुए कि दोपहर का भोजन, अभी 3-4 घंटे ही नहीं हो गए तो रात का भोजन, ये किसने कहा 3 बार खाने के लिए? आवश्यकता ही नहीं है शरीर को इतना सब, शरीर की आवश्यकता बहुत कम है। जितना अधिक डालोगे शरीर रोगी बनेगा फिर, और फिर एक दिन अचानक अरे ऐसा कैसे हो गया, वैसे कैसे हो गया। आग पर बर्बाद और विकृत हुआ आहार, तला हुआ तेल घी इत्यादि। तीसरा, चौथा, न खाने योग्य सब्जियां, नमक घी मसाले, अवांछित खाद्य, चाय कॉफ़ी कोल्ड ड्रिंक, ये सारी चीज़ें। जितना ये सब अंदर डालोगे उतनी क्या होगी, उत्तेजनाएँ होगी, नींद आएगी, ओवर ईटिंग एक्स्ट्रा ईटिंग, भूख के बिना खाना, ये सब योगियों के लिए नहीं है। अध्यात्म में जिसे बहुत ऊँचा जाना है, लंबा समय तक अशरीरीपन का अभ्यास सहज करना है, जबरदस्ती नहीं, मैं आत्मा हूँ मैं आत्मा हूँ, या आत्मा बोलने से कुछ भी नहीं होता है। अगर किसी को बता दिया जाए ये है पानी, इसका ये है फॉर्मूला H2O, वो कहता है H2O, बहुत प्यास लगी ना तुमको, आप बोलो H2O, कुछ नहीं होगा। राम 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 राम, ये भी वही है, बाबा मदद करो, ये भी वही है, मैं महान आत्मा हूँ, ये भी वही है। अगर ये H2 है तो वो भी वही है, अनुभव कुछ भी नहीं हो रहा है। अभी इतना आकंठ तक यहाँ तक खा लिया, जैसे पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा ऐसा, और फिर बैठे मैं आत्मा हूँ, महायोगी ज्वालामुखी योगी हूँ, क्योंकि जो कुछ डाला ऊपर से ऐसा लगा काम पूरा हुआ, रात में तो डाल दिया काम, यहाँ काम रात भर कितना काम दे दिया उसको, कितना सारा पचाने को काम दे दिया उसको, और कितनी वैरायटी दे दी, ये भी दे दिया वो भी दे दिया, इतना सब दे दिया, बेचारा शरीर, पूरी ऊर्जा शरीर में लग गई है, मस्तिष्क की ऊर्जा शरीर पेट की तरफ चली गई। जब पेट को ऊर्जा की आवश्यकता नहीं, वो ऊर्जा अपने आप मस्तिष्क की तरफ जाती है, और मस्तिष्क सक्रिय होता है, नए विचार नई क्रांति आती है मन में, और सारी ऊर्जा हमारी भोजन में ही पचाने में जा रही है दिन रात, तो ऊर्जा का आरोहण कैसे होगा, असेंशन ऑफ एनर्जी होगा ही नहीं, क्योंकि सारा वर्क 80% हम किसको दे रहे, डाइजेशन को और निकालने को, डालो और निकालो, यही काम चालू है दिन रात, डालते हैं और निकालते हैं, डालते हैं निकालते हैं, नहीं निकलता तो दवाइयाँ। अगर सबके कमरे ढूंढे जाए तो पता नहीं कैसे कैसे चूर्ण निकलेंगे डब्बों में रखे हुए, पता नहीं आधी अलमारियां भर रखी है चूर्णन से, क्योंकि दूसरी समस्या ही नहीं है, एक ही समस्या है बस, कब्ज। कॉन्स्टिपेशन इज अ नेशनल इंटरनेशनल डिसऑर्डर। पेट भारीपन लग रहा है, क्या हो रहा है, पेट में इधर हल्का सा दर्द है, इधर भारीपन है, पेट साफ नहीं होता है, उल्टी जैसा लगता है, पता नहीं क्या होता है। हाथ ऐसे ऐसे हाथ लगा के देखिए, ऐसे करते इधर इधर, हाँ ठीक है नहीं एक बार लगा के तो देखो आप, हाँ ये यहाँ दुखता है, और सोनोग्राफी तो इतनी कर ली की बात मत पूछो, कहीं कुछ नहीं आता है। एंडोस्कोपी होगी, सोनोग्राफी होगी, सब हो गया। इसको दिखा, तीन चार सारे डॉक्टर्स को दिखा के हो गया, सब फेल। अभी क्या ले रहे हो? अभी वो जो है ना उधर एक गांव, वहां पे एक है, एक उसने एक वो दिया है जड़ी बूटी, वो चालू है अभी उससे। हाँ उससे ठीक है अभी, पर एक महीने के बाद क्या हुआ? वो तो काम नहीं कर रही। अब दूसरा दो, कुछ भी काम नहीं करता है। ये काम कुछ भी नहीं करेगा जब तक कि प्रकृति के नियम को नहीं समझोगे। नेचर्स फर्स्ट लॉ, ईट नेचुरल थिंग्स इन नेचुरल फॉर्म, जो जैसी है उसको वैसे ही स्वीकार करना। या जैसे का एक दिन में ये काम नहीं होगा, अचानक एवरेडी बहुत काल का पुरुषार्थ, इसमें भी वही रूल है। जो रूल्स उधर है ईश्वरीय, वो सब इधर भी है। क्या शाकाहार का अर्थ है कि नहीं खाने योग्य कोई भी वनस्पति जन्य वस्तु है, हमें सीधा प्राकृतिक अवस्था में ना खा सके तो किसी तरह पका कर मसाला के द्वारा खा ले। कितने ही ऐसे आहार है जिसे प्राकृतिक अवस्था में खाने की कल्पना तक नहीं की जाती। अनाज, हरी सब्जियाँ, ये बेसवादी फीकी सब्जियाँ, ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे लिए नहीं है, पर हम खाए चले जा रहे मसाले डाल डाल कर। जिस तरह घास खाकर आदमी पूर्ण स्वास्थ्य की उपलब्धि नहीं कर सकता, उसी तरह अनाज खाकर पूर्ण स्वास्थ्य को कभी उपलब्ध नहीं हो सकता, ना जिंदा रह सकता है। बी अशेम्ड ऑफ योर फॉल्स वेजिटेरियनिज्म। ये जो शाकाहार है ना, शर्म आनी चाहिए तुम, इतना भयंकर वाक्य है। Adopt and be proud of being fruitarian. Fruitarian अर्थात फलाहारी, fruitarian अर्थात शुद्ध शाकाहारी। हमारी अंत प्रेरणा हमें फल मेवों का समर्थन करती है। ये बाकी जो चीज़ें हैं ना, ये हमारा मन मना करता है, परंतु हम उसे पका पका के मसाले डाल डाल कर, मिर्च डाल डाल कर, मसाले नमक डाल डाल कर उसको स्वादिष्ट बनाते हैं और खा रहे, उसको टेस्टी बना रहे, पर वो पच नहीं रहा है। वो अम्ल कारक है, हमारी नसों में फंस रहा है, और फिर हार्ट ब्लॉक, ब्रेन ब्लॉक, स्ट्रोक, कभी अचानक हार्ट अटैक, अचानक पेट में कुछ ना कुछ हो रहा है। हाँ, अभी प्रश्न ये है कि एक दिन में नहीं होगा काम, समझ तो लिया, बुद्धि ने मान लिया है, पर शरीर इतना जल्दी नहीं मानता है, उसको आदत है। उसको तो एक नाश्ता नहीं करो तो ऐसा लगता है कब टूट पड़ू दोपहर के भोजन पर, ऐसी उसको आदत है। अभी ऐसे शरीर को और ऐसे मन को लगाना, तो ये काम कैसा होना चाहिए? बहुत स्लोली, समझ के साथ, स्लोली एंड ग्रेजुअली, धीरे 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 धीरे। तो हमें पहुंचना है संगम युग पर, डाइट का संगम युग। ये है कुक्ड, ये है अनकुक्ड। रॉ तक पहुंचना है तो धीरे धीरे पहुंचना है, एकदम नहीं होगा। तीन बार अभी चावल खा रहे, तीन बार रोटी खा रहे, तो अभी उसको दो बार कर दो, फिर एक बार कर दो, फिर उसी को लंबा समय तक चलाओ, एटलीस्ट तीन महीना तक उस पर फिक्स रहो कि अभी ये खाना है। पता है इसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं खानी है, पर फिर भी रहो, क्योंकि एकदम नहीं आ जा सकता है। एकदम आएंगे तो बॉडी रिएक्ट करती है, डिमांड करेगी, मांगेंगी, योग में वही दिखेगा, वही याद आएगा। धीरे 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 ट्रांजिशन करना है, बहुत स्लोली स्लोली, समझते हुए। जैसे आलू एक बहुत अच्छी चीज़ है, बॉइल्ड पोटैटो, इसको ट्रांजिशन पीरियड में एक अच्छा आहार बनाया जा सकता है, बाद में अलग बात है, पर ट्रांजिशन फेज में ये फीलिंग है, पेट भरता है, ऐसा लगता है भर गया है, ठीक लग रहा है। अंकुरित, ऐसा लगता है भर गया है, ठीक है, अच्छा। पोहा, अच्छा लगता है, रॉ, भर गया। ये सब ट्रांजिशनल डाइट है, बहुत सारे जमी का, ये क्या होता है वो, स्वीट पोटैटो, शकरकंद, भरता है उसमें पेट और स्वादिष्ट है। सारे जूसेस, सारे फ्रूट्स, सारे वेजिटेबल, स्मूदी बनाओ बहुत सारी अलग अलग प्रकार की, कि जिससे ऐसा ना लगे कि हम भूखे मर रहे। सेंग दाने, उसको भिगो के रखो, फिर उसको किसी में डालो। ड्राई फ्रूट्स, उसको भिगो के रखो। खजूर, खजूर एक बहुत अच्छी चीज़ है, वेरी फुलफिलिंग। अंजीर, ये सारे जो है फुलफिलिंग है, इनको हमको बीच में इंक्लूड करना है ज़्यादा से ज़्यादा। उस दिन भी बताया था हाफ प्लेट रूल, अर्थात आधा सलाद हो, आधा भोजन हो, और धीरे धीरे शरीर को भूखा रहने की आदत डालनी है, शरीर को धीरे धीरे त्याग की आदत डालनी है, तो फिर धीरे 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 शरीर में जो विषाक्तता है, पूरे टॉक्सिन्स भरे हैं, वो धीरे धीरे निकलेंगे। इंटरमिटेंट फास्टिंग बीच बीच में, धीरे 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 स्वास्थ्य की तरफ शरीर जाएगा। और ये मार्ग में सबसे बड़े बाधक कौन है? चार पी, पहला पति, पत्नी, परिवार और पड़ोसी। ये लोग क्या कर देंगे जैसे इस मार्ग पर चलेंगे? सबसे पहले बाधक डालने वाले कौन है? अभी एक लास्ट पॉइंट, जब हम ज्ञान में आते हैं, ये ज्ञान में आना है, ये भोजन नए प्राकृतिक आहार की तरफ जाना है। जैसे उस ज्ञान में आते हैं तो परिवार वाले दुश्मन बन जाते, जैसे इस आहार की तरफ जाएंगे परिवार वाले दुश्मन बन जाएंगे, डांट पड़ जाएगी। जैसे वहां आने के बाद लोग विरोध करते हैं, वैसे यहां भी विरोध करेंगे। जैसे वहां जाने के बाद एक नशा सा चढ़ जाता है, वो यहां पर भी नशा चढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि नई फुर्ती, नई ऊर्जा, नई शक्ति। पहले योग में नींद आती थी, अभी नींद ही नहीं आती है योग में। एकदम पावरफुल योग हो गया, एकदम नशा चढ़ गया है। जैसे यहां आने के बाद लगता है किस किस को पकड़ के ज्ञान सुनाऊं, वैसे यहां आने के बाद लगता है ये भी सबको बताऊं कि ऐसा होता है, ये क्यों करते हो, वो क्यों करते, ये करो। इधर जो होता है वो इधर होगा सेम। जैसे यहां आने के बाद लोग तुम्हारी किताबें फेंक देंगे, तुम्हारा ट्रांसलेट फेंक देंगे, तुम्हारा सेंटर जाना बंद करा देंगे, वैसे यहां पर भी भयंकर विरोध से गुजरना पड़ेगा। ये ऐसा क्यों करता है, ये वैसा क्यों करता है, ये वो क्यों होता है। ये जहां जो ज्ञान में आने के बाद हुआ, ये इधर फिर से होगा। ये जो BA में पेपर आया था, ये MA में फिर आएगा। वही स्टेज से वापस गुजरना पड़ेगा। पर ये गुजरना बहुत कल्याणकारी है, क्योंकि इसके बाद यू बिकम मास्टर। चाहे भोजन है आज नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे कुछ भी बनने दो, ऐसा नहीं कि खाना ना खाने की बात नहीं है, फ्रीडम की बात है। चाहे तो खा भी लूं पर अगले दिन नहीं खाऊं। अभी एडिक्शन नहीं है, पिछले पहले कैसे था, आज अगर खा लिया तो अगले 3 दिन वही चाहिए, इतना स्वादिष्ट था, वो छूट नहीं पाते उससे। अभी फ्रूट फ्रीडम की अवस्था है। फ्रूट फ्रीडम अर्थात व्यक्ति खा रहा है उसमें, ये नहीं कि खाना ही बंद कर दिया, जब चाहे तब खाता है, जब चाहे तब नहीं खाता है। कमांड है, ऑर्डर है, मालिक है वो, ये मालिकपन की स्थिति है। और बॉडी भी हेल्थी रहती है। यहां पहले चालू किया तो सीधा वेट लॉस, लोग क्या कहने लगे, कैंसर तो नहीं हो गया, खाना पीना छोड़ दिया क्या, कमजोर दिख रहे हो, कोई बीमारी तो नहीं हो गई। हाँ, ये तुम ज्यादा सुन रहे हो, ये बंद करो, ये श्रीमत नहीं है, ये मनमत है तुम्हारी, बंद करो इसको। पर यहां जाते जाते हमें अपने ही बारे में नई बातें पता चलेगी, एक नई ऊर्जा, एक नई शक्ति, एक नया योग। जो पहले 8-8 घंटे सोते थे और योग में भी नींद आती थी, वो बंद हो जाएगी। उठने को दिल नहीं करता था, अचानक आंख खुलेगी, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, नए आयाम से शरीर गुजरेगा। और सारी बीमारियां जो छोटी छोटी होती रहती थी, वो जैसे हो ही नहीं रही है। क्रिएटिविटी बढ़ जाएगी, वो तो हमने उस दिन गिना थे 15 फायदे, क्या क्या होगा वो। ये सारे प्रयोग हर एक को अपने ऊपर करने हैं। और जैसे उस दिन भी कहा था, 3 मास ये प्रयोग करके देखने, चाहे आहार के, योग के, ब्रह्मचर्य के, सब अपने शरीर पर प्रयोग कर देखो, फास्टिंग के प्रयोग, रॉ डाइट के प्रयोग, सारे। और ये करते करते अगर जो ठीक लगा वो लो, जो नहीं ठीक लगा उसको छोड़ दो। हम जो बातें बता रही है, किसी भी बात का विश्वास नहीं करना है, रिजेक्ट, ट्राई, एक्सपेरिमेंट, रिसर्च। ठीक लगा तो लो, जो ठीक नहीं लगा उसको फेंक दो, अपना नया मार्ग बनाओ। ये साधना का पथ है, अपनी पगडंडी हमें खुद बनानी है, कोई भी रास्ता नहीं है इसमें। हमें अपने मार्ग से गुजरना है, नया मार्ग, कई बार वापस भी आना पड़ेगा कि ये मार्ग ठीक नहीं है, विदाउट फ्रस्ट्रेशन फिर नया मार्ग चालू करो। ये है साहस। निर्भयता अर्थात ये नहीं कि भय नहीं है, निर्भयता अर्थात संपूर्ण भय के साथ साहस का प्रदर्शन, ये निर्भयता है, ये निर्भयता का मार्ग है। निर्बल के बलराम, परमात्मा साथ है इस मार्ग में। और ये हम किस लिए कर रहे हैं? लक्ष्य है स्वराज्य अधिकारी बन जाना। किस लिए कर रहे? सारी कर्मेंद्रिया शिथिल हो जाए। किस लिए कर रहे? सारी कर्मेंद्रिया वश में आ जाए। किस लिए कर रहे? अचानक एवर रेडी का पार्ट पक्का करने के लिए। एक समय आएगा कुछ भी नहीं मिलेगा, तब क्या करोगे? बाबा पनीर पनीर पनीर, बाबा ब्रह्मा भोजन कब होगा, दिवाली आ गई कुछ भी नहीं। बाबा कहेगा मैंने तो ये सब खा ही नहीं था, मैंने तो कहा था सूखी दाल रोटी दूंगा, ये है। पर इंटरेस्ट किसको है सूखी दाल रोटी में? जब वो खाने की आदत पड़ गई, सूखी दाल रोटी खा के दिखाओ, एक दिन करके दिखाओ, बिना वो जो फीका बनता है ना, कम से कम वो एक दिन खा के दिखाओ, शाम तक लगेगा जीवन व्यर्थ है। जैसे किस लिए आए थे, आंखों से आंसू आएंगे बिना नमक का खाके, कि ये क्या है, कौन से पाप की सजा है। छोड़ो, जो नाश्ते में बना वही दोपहर का बना, और वही रात को अगर बन जाता है तो रात होते होते वही पोहा दोपहर में था, सुबह भी था और रात में भी वही, कैसे भाव से खाएंगे, वाह वाह आह हा धन्यवाद। हाँ, बोर हो जाते हैं। ये भी साधना है, इसको साधना की रीति से करना है। और हेल्थ साइड इफेक्ट करके आ जाएगा, योग में स्थिति ऊपर अपने आप आ जाएगा, अपने आप शरीर स्वस्थ हो जाएगा, क्योंकि शरीर में हमने जो टॉक्सिन्स जमा करके रखे वो निकलने चालू हो जाएंगे, नई ऊर्जा आएगी। तो नेचर्स रूल, जैसे श्रीमत का स्टडी करते हो, श्रीमत 108 श्रीमत निकाले ना, वैसे आज प्रकृति के क्या क्या नियम है 10-12 तो यहाँ गिना है, तो उसका एक चार्ट बनाना है निखिलेश भाई, ठीक है। प्रकृति के रूल्स, लॉज ऑफ नेचर क्या क्या है, सारे नेचर के लॉ, ऐसा किया तो ऐसा होता है, वैसा नहीं किया तो वैसा होता है, ये नेचर्स के लॉ, इसकी लिस्ट बनानी है हर एक ने। खाली भोजन से संबंधित नहीं, जीवन से संबंधित प्रकृति के नियम क्या है। ओम शांति। शिवा।